Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम आपके लिए देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक, कारोबारी और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरें लेकर हाजिर हैं और इन खबरों पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं आर्थिक विशेषज्ञ एसपी शर्मा जी। एसपी शर्मा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
वार्म वेलकम डॉक्टर शर्मा।
शुक्रिया, थैंक यू।
और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में है राजेश।
Domestic benchmark indices, Sensex and Nifty, end lower by 0.7% each. RBI keeps repo rate unchanged at 6.5%. And crude oil price remains steady after 2 days of gains.
घरेलू बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी लगभग 0.7% के नुकसान के साथ हुए बंद। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 6.5% पर रखा बरकरार और 2 दिन की बढ़त के बाद कच्चे तेल की कीमतें आज स्थिर रहीं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में बदलाव न करने के फैसले के बाद घरेलू बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में आज उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिला। दोनों के सूचकांक नुकसान के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 582 अंक यानी 0.73% की कमजोरी के साथ 78,886 पर पहुंचकर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 180 अंक यानी 0.74% की गिरावट के साथ 24,117 पर रहा। बीएसई के विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक 0.44% के घाटे में रहा और स्मॉल कैप भी 0.16% नीचे रहा। सेंसेक्स में आज 30 में से 23 कंपनियों में गिरावट दर्ज की गई।
डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडेक्सेस सेंसेक्स एंड निफ्टी एंडेड इन द नेगेटिव टेरिटरी अमिड हाई वॉलेटिलिटी फॉलोइंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज डिसीजन टू कीप इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज्ड। एट क्लोज द सेंसेक्स विच ट्रैक्स 30 companies was down 582 points or 0.73% at 78,886. Meanwhile, the Nifty 50 fell by 180 points or 0.74% at 24,117. The BSE mid-cap index was down 0.44% and small-cap index shed 0.16%. In the Sensex Index, 23 out of 30 companies traded in the negative territory. The top gainers today were Tata Motors 1.57%, HDFC Bank 1.06% and Bharti Airtel 0.69%. The major laggards were Asian Paints 3.21%, Infosys 2.84% and Power Grid 2.74%. In sectoral indices at the BSE, all 18 out of 20 sectors traded in loss. Commodities, IT and metal index were the biggest losers, while healthcare index gained 0.22% and Benchex ended flat. The overall market breadth at the BSE was negative out of 4,014 companies. Shares of 1,829 companies advanced, 2,083 declined, and 102 remained unchanged.
विदेशी मुद्रा बाजार में आज रुपया डॉलर के मुकाबले 1 पैसा गिरकर 83.96 रूपये के स्तर पर बंद हुआ। वहीं डॉलर इंडेक्स आज मजबूती के साथ 103.1 पर कारोबार कर रहा था। एसपी शर्मा जी, कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका हम स्वागत करते हैं।
जी शुक्रिया।
और शेयर बाजार की चाल को देखें, इसकी रफ्तार को देखें, सारी बातों को देखें तो ये जो हालात आज हुए, जिस तरह से नेगेटिव में खुला और उसके बाद बैंक के रिजर्व बैंक ने जो अनाउंस किए चीजें उनके बाद गिरावट देखी गई। हालांकि इसके पहले एक बड़ी गिरावट हम देख चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि अभी मार्केट का रुख कैसा रहेगा? क्या वहां तक वापस पहुंचना जरूरी है या करेक्शन आना जरूरी था, या फिर और भी जो बातें हैं चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो क्या माहौल आपको लगता है?
देखिए, सबसे पहले जो आरबीआई की पॉलिसी का इसके ऊपर कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है। जो गिरावट है वो एक ऑर्डरली गिरावट है, वो खास करके जो हम देख रहे हैं कुछ वॉलेटिलिटी अनसर्टेनिटी बनी हुई है ग्लोबल मार्केट्स में, जिसकी वजह से जो प्रेशर है सभी जो एशियन मार्केट्स हैं उनके ऊपर हमने प्रेशर देखा कुछ दिन पहले, तो एक उस प्रेशर में एक प्रॉफिट बुकिंग जब आती है, जब हम देखते हैं कि मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे बिहेव कर रही थी, तो उसके बाद इन्वेस्टर भी चाहता है कि उसको कुछ मुनाफा मिले, वो कुछ अपना प्रॉफिट बुक करे, क्योंकि आगे जो अनसर्टेनिटी जो ग्लोबल लेवल पे हम देख रहे हैं, जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स डीपन हो रही हैं, जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल वॉलेटिलिटी बनी हुई है, जो करेंसीज के ऊपर प्रेशर बना हुआ है, तो उसकी वजह से ही एक प्रॉफिट बुकिंग उस लेवल पे आना जब मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे होती है तो स्वाभाविक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो आज का जो रवैया रहा है, जो उन्होंने कैलिब्रेटेड स्टेप लिया कि स्टेटस को क्या जो उन्होंने एक अख्तियार किया, तो उसको हमें अप्रिशिएट करते हैं, दैट इज इन फेवर ऑफ द इकोनॉमी। उससे क्या होगा कि अगर अभी इंटरेस्ट रेट कट होता है, क्योंकि अभी वो फेवरेबल नहीं है, हमारा जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन इज नॉट दैट मच इन द कम्फर्टेबल ट्राजेक्ट्री, इन्फ्लेशन अभी भी एलिवेटेड है, 5% से ऊपर है, और जिसकी वजह से जो रेपो रेट में कट करना अभी स्वाभाविक नहीं है, जिसकी वजह से आरबीआई ने ये बहुत अच्छा कदम हम कहेंगे उठाया है, क्योंकि जब कंडीशंस जो है थोड़ी चैलेंजिंग हो, जैसे अभी हम देख रहे हैं ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, उधर यूएस में जो इन्फ्लेशन ट्राजेक्टरी भले ही सॉफ्टन उसमें मोड में है, लेकिन अभी वो उनके कंफर्टेबल जोन में नहीं है, जिसकी वजह से फेड भी अपना बार बार जो डिसीजन है उसको स्टेटस को ही रख रहा है, कम नहीं कर रहा अपना जो इंटरेस्ट रेट है, तो कुल मिला के जो ग्लोबल सिचुएशन है वो काफी अनसर्टेन एंड वॉलेटाइल है, लेकिन हमारी जो इंडिया की जो स्थिति है, इंडिया जैसे हम कहते हैं कि हमारा जो फंडामेंटल्स है वो बहुत स्ट्रांग है, तो वो हमारे सामने है, क्योंकि आरबीआई का अगर आप पॉलिसी देखेंगे तो उसमें से हमें आज जो इंडिकेशन मिला है कि हम ग्रो करेंगे 7% से ऊपर ग्रो करेंगे, हमारी जो इन्फ्लेशन ट्राजेक्टरी है वो लगभग 4.5% रहेगी इस वर्ष में, और उन्होंने आगे जो बताया कि हमारा जो खरीफ प्रोडक्शन है, खरीफ जो क्रॉप्स हैं उनकी जो सोइंग है वो इंटैक्ट है, आने वाले टाइम में जो सप्लाई साइड है वो काफी अच्छी रहेगी, इन्फ्लेशन में कमी आएगी, और जो डिमांड है खास करके जब एग्रीकल्चर में आपके ग्रोथ आ रही है तो देन योर रूरल सेक्टर ऑल्सो ग्रोज, तो रूरल सेक्टर में जो डिमांड रहेगी उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग डिमांड, और जो अर्बन एरियाज में जो सर्विसेज सेक्टर के द्वारा जो सपोर्ट हो रही है, जो डिमांड इंटैक्ट रहेगी, उसकी वजह से हमारी इकॉनमी बहुत अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस इस साल भी करने वाली है।
तो आपको लगता है कि उस दायरे तक हम दोबारा जल्दी पहुंचेंगे जहां तक हमने सेंसेक्स को बिल्कुल हाई मकाम पर देखा, बहुत ही ऊंचाई पर देखा?
देखिये, उसमें बिकॉज मार्केट्स आर ऑलवेज अनसर्टेन, मार्केट को हम ऐसा एंटीसिपेट तो नहीं कर सकते कि मार्केट्स वापस उसी लेवल पे बहुत जल्दी चली जाएंगी या देर से जाएंगी, क्योंकि मार्केट्स आर नॉट इन आइसोलेशन, मार्केट्स को जो ग्लोबल एनवायरमेंट है बहुत इम्पैक्ट करता है। हाँ, ये जरूर है कि अगर ग्लोबल अनसर्टेनिटीज खत्म हो जाती हैं तो मार्केट्स इससे भी बड़े स्तर बना सकती हैं, क्योंकि हमारे पास जो चैलेंज है दैट इज ओनली फ्रॉम द ग्लोबल साइड, हमारे जो अपने फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रांग है, हमारी ग्रोथ परफॉर्मेंस अच्छी है, हमारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं, जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, जो ग्लोबल वॉलेटिलिटी है, जो हम देखते हैं कि जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, हर रोज हम नई खबर सुनते हैं, तो उसकी वजह से जो माहौल है वो अनसर्टेन हो जाता है ग्लोबली, जिसकी वजह से मार्केट्स भी थोड़ा कॉशियस कंडीशंस में बिहेव करती
हैं। वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन विद डॉक्टर शर्मा, बट बिफोर दैट हियर इज एन इम्पोर्टेंट न्यूज। द आरबीआई, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज 6-member मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज केप्ट द रेपो रेट अनचेंज्ड एट 6.5% फॉर द 9th टाइम अमिड रिस्क्स फ्रॉम हायर फूड इन्फ्लेशन। अनाउंसिंग द डिसीजन, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास सेड दैट इन्फ्लेशन ब्रॉडली हैज बीन ऑन अ डिक्लाइनिंग ट्रैजेक्टरी। Governor Das further highlighted that the Reserve Bank has taken several measures for the orderly development of the digital lending ecosystem in India. As a further measure in this direction and to address the problems arising from unauthorized digital lending apps, DLAs, The Reserve Bank has proposed to create a public repository of DLAs deployed by its regulated entities. This measure will help the consumers to identify the unauthorized lending apps. The central bank has also decided to enhance the limit for tax payments through UPI from 1 lakh to 5 lakh rupees per transaction. This will further ease tax payments by consumers through UPI. Dr. Sharma, RBI has taken a wait and watch kind of mode, holding interest rates steady while awaiting cues from the U.S. Federal Reserve, right? So this, you said a while back, this wait and watch, this decision by RBI is a good decision because this will help the economy to move further and take up things accordingly. But what is important is also that the government has decided to maintain a fine balance between protecting the interest of the farmers and also at the same time the consumers so that they don't pay too high prices. So how do you tackle this, according to you, how would you tackle this inflation that is that the government is trying to take head on, and how does the people and the farmers, the balance that the government, the RBI is trying to maintain, how does it go augur well for us?
Yes, very good question, because farmer sentiment is very, very important, and if the farmer sentiment is positive, then they produce more and the supply chains becomes more robust and the inflation trajectory becomes normal. So I would say that more and more focus on the rural infrastructure is needed so that farmers are able to reduce their wastages and connect more with the supply chains, with the mandis and with the markets, and finally with the international markets, because now if they grow high, if the food production becomes all time high every year, then we have to tap the global markets also. We have to increase our export trajectory so that we are becoming more and more robust and we are becoming profitable, and profit goes to the farmers. So that is the thought, that the profitable ventures in the farmer segment will boost the production possibilities and tackle the inflation trajectory and connect more with the supply chains. And I would say that this inflation is becoming more and more challenging in the recent years, particularly after the coronavirus. But with the calibrated steps by the Reserve Bank of India and the policy measures by Government of India, the inflation trajectory is coming significantly down. It was more than 7.5% recently in the months of April, May. So with the calibrated efforts, now the trajectory is becoming soft and inflation is now 5.1%. But still, many economies are facing the inflation challenges. That's why they are not able to reduce their interest, particularly in the U.S. Inflation remains sticky at around 3%. The Fed is not able to take the decision to reduce the policy rate. So that's why the global markets are waiting for the reduction in U.S. interest rates so that supply chains and the liquidity becomes robust and markets are in their normal growth trajectory.
So, Dr. Sharma, vegetable inflation remains a major concern,
right,
reaching 29.3% in June, and it was in May 27.4%. And particularly that of top tomatoes, onions, and potatoes, these are the ones which have really gone very high. So the government is doing all it can to keep food prices low, from selling vegetables and pulses at low prices to imposing stock limits and export curbs. What else can be done?
The problem is from the supply chains, actually. When you face some disruption or some weather disruption, like we are facing the monsoon becoming more and more deepened, and sometimes there are problems in the traffic movement because of heavy rainfall. So that's why some perishables which are needed at a juncture in some mandis are not able to reach there. So the prices shoot up for those commodities. So I think the production, growth of production sometimes remains intact, but the supplies are not intact, so that's why the prices go up, and sometimes hoarders also take advantage of the such kind of situations. But the government is doing a lot. They have now provided the infrastructure connecting the mandis, but this has to be produced more, and this has to be strengthened more in the coming time, so that the supplies remain intact during the difficult times also. Because
एसपी, अभी आरबीआई की अगर हम बात करें तो बैंक ने ये कहा है कि जमा में गिरावट हो रही है, यानी कि बैंकों के पास जो पैसा जमा हो रहा है उसमें गिरावट आ रही है, तो बैंकों से कहा गया है कि आप कुछ ऐसे उपाय कीजिए जिससे कि बैंक में जमा बढ़े। तो इस कदम को आप किस तरह से देखते हैं, खासतौर पर ऐसे समय में जब लिक्विडिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय हो जाता है सभी के लिए?
देखिए, उसमें जो सबसे बड़ा कारण हमें लगता है कि जो सेविंग्स में कमी हमने देखी है थोड़े पीछे के कुछ वर्षों में, तो खास करके जब से मार्केट्स बहुत रोबस्ट हुई
जी,
जब हमारी स्टॉक मार्केट्स बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रही हैं, और जो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो आपको कितना मिल जाएगा बैंक में से, 8% 9% 9.5% मिल जाएगा आपको, इतना तो मिलता भी नहीं है, दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल टू सर्टेन एक्सटेंट। लेकिन फिर जो लोग क्या देखते हैं कि हमें थोड़ा मनी और चाहिए, उनका जो जब देखते हैं कि मार्केट्स बहुत रोबस्ट, आपने देखा कि रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत इंक्रीज हुई है, हम देखते हैं कि रिटेल ट्रांजेक्शन जो हैं, दीज ट्रांजेक्शन आर मोर देन 40% 45%।
राइट,
तो रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ने का मतलब क्या है, वो पैसा कहां से आएगा? इफ द रिटेलर्स आर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट, द मनी इज कमिंग फ्रॉम देयर सेविंग्स, वो अपना सेविंग्स को चैनलाइज कर रहे हैं कि वो सीधा मार्केट से ज्यादा प्रॉफिट ले लें, जिस वजह से मैं समझता हूं कि शायद उस वजह से, कारण और भी हो सकते हैं, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स के जो लोगों का रुझान है ज्यादातर वो फाइनेंशियल एसेट्स की तरफ और बढ़ा है, क्योंकि क्या है अभी अभी जो गोल्ड है
जी,
गोल्ड के खरीदने के भी तरीके तौर तरीके बदल चुके हैं, वो भी एक फाइनेंशियल कॉमोडिटी बन चुका है, आप उसको स्टॉक मार्केट में खरीद सकते हैं। अब गोल्ड को पहले व्यक्ति जो थे फिजिकल फॉर्म में खरीद के वो एक फिजिकल एसेट में चला जाता था, राइट, अभी जो वो फाइनेंशियल मार्केट में रिफ्लेक्ट होता है, तो काफी जो मोड है वो चेंज हुए हैं, जिसकी वजह से हमें ये सब चीजें जो ट्रेडिशनल पैटर्न से, अगर हम कहेंगे सेविंग्स जो है हमारी 30% ऑफ जीडीपी होना ही चाहिए, 31-32% ऑफ जीडीपी होना ही चाहिए उसमें,
right.
लेकिन उसके जो बैंकों में जो खास करके जो सेविंग डिपॉजिट्स हैं, जब हमारे जो डायनामिक्स हैं वो चेंज हो गए, जब हमारे जो पैटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं वो चेंज हो गए, तो बैंक्स में भी उस तरीके का बदलाव हमें देखने को मिलेगा।
ओके, आई एम कमिंग बैक टू द हॉट टॉपिक टुडे, द इन्फ्लेशन पार्ट ऑफ इट, एंड आई एम रीडिंग एन
एक्सपर्ट। यस, यू आर वेरी कंसर्न्ड विद इन्फ्लेशन,
वी शुड बी एज इंडियंस, द इकोनॉमी इज वेरी कंसर्न्ड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, सो द इकोनॉमिक सर्वे कॉल फॉर री एग्जामिनिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क,
yes,
which has been adopted by the RBI. It has pitched for the exclusion of food items prices which are driven by supply constraints, which you also mentioned,
right,
rather than demand shocks, which distort the whole inflation picture. Inflation could well be under control in other sectors. So this is what they are saying. They are saying give coupons to those who need.
Right, right.
But my question to you, is that a theoretical solution? Or is that a practical solution?
I don't see that as a theoretical solution. That is the practical, actually. Because you study the inflation trajectory. Inflation in the core sector, inflation in the other segments is under control and becoming benign and rational. But in the food items, because of such kind of disruptions, sometimes the heavy rain, sometimes the extreme weather conditions and low temperatures, and sometimes a fog in times of winters. So all these things are disrupting sometimes the supplies, and the inflation in the food items becomes escalated. So that impacts overall trajectory of the inflation, and inflation becomes higher. So I think we have to address this issue of supply chain, in particularly in the food segment, so that supplies are robust and farmers are also able to take the advantage of their produce, actually. Sometimes they are also not able to take the advantage, because if the supplies are disrupted, then they are not able to protect their produce. एंड दैट गोज इन वेस्टेजेस. सो आई थिंक दिस हैज टू बी एड्रेस्ड विद सम स्ट्रेटेजिक पॉलिसी मेजर.
एसपी, मेरा सवाल थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक सा होगा कि अभी आरबीआई ने इस बात को माना है और हम भी ये जानते हैं कि ग्लोबल स्थिति बेहद ही चुनौतीपूर्ण है. आसपास अपनी कंट्री के माहौल को अगर हम देखें तो वो भी कहीं ना कहीं अराजकता का हमें नजर आता है. तो ऐसी स्थिति में आरबीआई की ये चिंता करना कि कुछ देशों के सेंट्रल बैंक ब्याज दरों में कटौती के बारे में विचार कर रहे हैं, आरबीआई इस पर कैसा रुख रख सकता है? और जैसे कि अभी राजेश ने भी महंगाई के बारे में बात की, इस पर क्या असर पड़ सकता है?
देखिए, सबसे पहले हमारी जो इकोनॉमी है बहुत ही रेजिलिएंट है
जी.
अगर हम पीछे के 6-7 वर्षों को देखें, खास करके जब से हमने देखा कि यूएस चाइना में ट्रेड वॉर हुई, उसका बहुत इम्पैक्ट हुआ इकोनॉमी के ऊपर. उसके बाद कोरोना वायरस ने हिट किया. कोरोना वायरस के बाद अभी हम उससे रिकवर नहीं हुए थे, उसके बाद ही जियो पोलिटिकल डेवलपमेंट शुरू हुई. पहले रशिया यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद फिर हमने देखा कि इसराइल और गाजा में चला हुआ है, अभी और टेंशन हैं ईरान और इसराइल, साउथ एशिया में. तो कुल मिला के जो कंडीशंस हैं, दीज कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फाइनेंशियल डेवलपमेंट्स. लेकिन उस परिस्थिति में भी जो हमारी इकोनॉमी ग्रो की, वी आर ग्रोइंग मोर देन 8% ऑन एन एवरेज इन द पोस्ट कोविड ईयर्स. अगर आप 21-22 का ग्रोथ देखेंगे, 22-23 का, 23-24 का 9.7, then 7%, and then last year 8.2%. And for the current year also, though RBI is anticipating that growth will be 7.2%, लेकिन हम अभी भी सोच रहे हैं कि ग्रोथ जो है वो पिछले साल के मुकाबले में बरकरार रहेगी. जो हमने 8.2% हमने ग्रोथ हासिल की, तो उसके आसपास इस साल भी जा सकती है, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ही इंटैक्ट है. तो इस संदर्भ में जो आपका सवाल है कि हम कैसे उसमें, बिकॉज वी आर अ रेजिलियंट इकोनॉमी, इफ द ग्रोथ इज देयर देन मनी ऑलवेज फाइंड द स्ट्रांग ग्रोथ पार्टनर एक्चुअली. एंड वी आर वन ऑफ देम. वी आर ग्रोइंग एंड मनी कम्स टू अस फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट्स, बिकॉज इंडियाज ग्रोथ ट्राजेक्टरी is very very strong and bright in the global ecosystem. As said by IMF that India is a bright spot in the global ecosystem, that is true. Okay. And we have proved that, and we have proved from our economic fundamentals, not only by the GDP numbers but by the other segments also. Humne exports mein kitni achhi maar, humne all time high export achieve kiya, 778 billion dollar last year. Uske alawa fir hum CAD ko address kar paye. CAD hamara abhi बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में है. फिस्कल डेफिसिट को हम कहां से 6-7% से कम करके अभी हम 4.9% पे फॉर द करंट ईयर हमने एंटिसिपेट किया.
फॉरेक्स रिजर्व,
फॉरेक्स रिजर्व हमारे ऑल टाइम हाई पे है. ठीक है, ये सब कुछ होने के साथ साथ हमने इन्फ्लेशन के की मौजूदगी में भी हमने इतनी ग्रोथ हासिल की, दैट इज एक्चुअली ग्रेट नंबर.
अच्छा चलिए, मैं इन्फ्लेशन की बात नहीं करूंगा, आप कहेंगे कि मैं इन्फ्लेशन पे ही अटका हुआ हूं. लेकिन माय क्वेश्चन टू यू इज दैट द गवर्नर टुडे सेड दैट ही विल कंटिन्यू टू बी निम्बल एंड फ्लेक्सिबल इन लिक्विडिटी मैनेजमेंट ऑपरेशंस.
राइट,
सो हाउ विल दैट बी डन एंड इज लिक्विडिटी अ कंसर्न?
आई थिंक लिक्विडिटी इज नॉट अ कंसर्न राइट नाउ, बट गोइंग फॉरवर्ड इफ सम सिचुएशन लाइक वी आर ऑब्जर्विंग दैट ग्लोबल सिचुएशन इज बिकमिंग वॉलेटाइल एंड जियो पोलिटिकल डेवलपमेंट्स आर डीपनिंग, सो इफ सच काइंड ऑफ कंडीशंस आर इम्पैक्टिंग द मार्केट्स, देन द आरबीआई मे टेक सम emergency measures also. That is in the ambit of Reserve Bank of India. Some such kind of conditions come, then they are always ready to do such kind of measures. But I believe there is no such kind of problem in the economy right now. Liquidity remains intact, and all the economic fundamentals are supportive. Like I said earlier that kharif sowing is higher, supply is expected to improve in the agriculture produce, and rural demand will be strong. Urban demand is expected to remain strong on the back of the services sector activity. Bank balance sheets are strong and the corporate profits are also robust. So all these developments are supporting the private investments and your capex, government capex is already intact. यू हैव ऑलरेडी अनाउंस द ग्रेट नंबर फॉर दी।
और अगली खबर पर आगे बढ़ते हैं। प्रमुख एशियाई सूचकांकों में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम 0.37% के लाभ में रहा, वहीं हांगकांग की हैंगसेंग में मामूली बढ़त देखने को मिली। जापान का निक्केई 0.74% नीचे रहा और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.46% गिर गया। चीन के शंघाई कंपोजिट में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। वहीं यूरोप के तीनों प्रमुख बाजार आज नुकसान के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक लंदन का फुटसी 1.15% कमजोर दिखा। फ्रांस की कैक में 1.10% की गिरावट देखी गई और जर्मनी का डेक्स 0.6% नीचे आकर कारोबार कर रहा था।
मेजर यूएस मार्केट्स क्लोज लोअर यस्टरडे आफ्टर अ वोलेटाइल सेशन फॉलोइंग अ रैली इन यूरोपियन एंड एशियन मार्केट्स। द बेंचमार्क एसएनपी 500 एंडेड द डे डाउन बाय 0.77%। द डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फेल 0.60%। मीनवाइल द टेक हैवी नैसडैक कंपोजिट लॉस्ट 1.05%। डॉक्टर शर्मा, टुडे एट अबाउट 9 or 10 or 10:30 or rather 8:30 a.m. in Washington, new figures or weekly jobless claims figure will be coming out. Right. Now, will they cause the same kind of mayhem that they did when on Friday the figures came out? What is your expectation?
My expectation is that I think the situation will remain overall same.
Volatile.
Not much improvement is expected because conditions are still same.
But it is also felt that there is likelihood that the Fed is going to reduce the rates.
Yes, rate trajectories I think different from the macroeconomic. Now they are willing to reduce the rate because they had already announced that they will reduce the rates in 2024. But not even a single measure is taken so far till the month of August. So going forward, I think the time has come to reduce the numbers.
But the market demands that the hawkish
market also demands and their economic structures also demand. Because U.S. economy is not able to grow in the normal trajectory. If they reduce the interest rates, then that will be a great support to the economy, and the economic environment will become robust, and the markets will be in their growing and growing trajectory. Actually,
oil prices held steady today amid significant volatility after two sessions of gains, with growing supply risks. In the global crude market, Brent crude was trading higher at $78.40 per barrel. Meanwhile, WTI crude was also up 0.21%, trading at $75.40 per barrel when reports last came in.
और सराफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। शाम 6:40 पर भारत में 24 कैरेट सोना 0.59% बढ़कर 69,390 रूपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं चांदी 0.54% बढ़कर 79,530 रूपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी। एसपी, आपका फेवरेट सब्जेक्ट गोल्ड, उसमें क्या कहेंगे आप?
मैं गोल्ड के ऊपर कहूंगा कि अभी दिस इज द राइट टाइम टू बाय गोल्ड। उसके लिए दो कारण मेजर हैं। एक तो कस्टम ड्यूटी कम होने से आपको प्राइसेस बहुत सही मिल रहे हैं इस टाइम पे। थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट, वी रिड्यूस द कस्टम ड्यूटी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 15% टू 6%, 9% डेसेलरेशन इन दैट। तो प्राइस इस टाइम पे बहुत बढ़िया है, और जिस तरीके से ग्लोबल कंडीशंस हैं, ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स है, उन सभी कंडीशंस जो है गोल्ड को सपोर्ट करती हैं। गोल्ड प्राइसेस आने वाले टाइम में इंटैक्ट रहेंगे। और
20 seconds, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस इन द कमिंग वीक?
माय एक्सपेक्टेशंस दैट मार्केट्स विल रिमेन वॉलेटाइल बिकॉज दिस इज द ईयर ऑफ वॉलेटिलिटी एंड वी हैव ऑब्जर्व सिग्निफिकेंट वॉलेटिलिटी इन द फाइनेंशियल मार्केट्स स्टार्टिंग फ्रॉम अवर जनवरी फरवरी एंड
इन्वेस्टर्स शुड वेट एंड वॉच।
इन्वेस्टर्स दोज हु हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन द मार्केट दे शुड वेट एंड वॉच, बट द न्यू एंट्रेंट्स विल थिंक अबाउट entering in the market because the condition is very volatile and uncertainties are there at the global front.
SPG, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जी शुक्रिया।
थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस SP, एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडिसेस सेंसेक्स एंड निफ्टी एंड लोअर बाय 0.7% ईच। RBI keeps repo rate unchanged at 6.5% and crude oil prices remain steady after 2 days of gains. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow,
good namaskar. Market Mantra.